एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सीखने के हमारे नजरिए को शायद पूरी तरह बदल सकती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जॉश वेट्सकिन की किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की कला के बारे में। और सच कहूं तो आज के जमाने में कौन तेजी से और बेहतर तरीके से सीखना नहीं चाहता।
सही बात है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस का कोई नया प्रोजेक्ट,
या फिर कोई नया शौक ही क्यों ना हो, गिटार सीखना हो, कोडिंग सीखनी हो।
हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ लोग मतलब पैदाइशी होशियार होते हैं या उनमें कोई खास टैलेंट होता है।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन सोच है,
लेकिन ये किताब इस धारणा को चुनौती देती है। ये बताती है कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, और वो सिद्धांत वो हर जगह लागू होते हैं।
अच्छा, मतलब ये क्या सीखें से ज्यादा कैसे सीखें पर जोर देती है।
एग्जैक्टली, ये कैसे पर फोकस करती है।
तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस किताब के लेखक से, जोश वेट्सकिन। ये नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो।
हाँ, जरूर सुना होगा, ये कोई आम लेखक नहीं है। इनकी कहानी ही अपने आप में मतलब कमाल किया।
ये वही जोश वेट्सकिन है ना जिनके बचपन के शतरंज की कहानी पर सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर नाम की मशहूर किताब और फिल्म बनी थी।
हाँ हाँ वही। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में नेशनल मास्टर और 16 में इंटरनेशनल मास्टर, शतरंज की दुनिया का एक चमकता सितारा।
कमाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जैसे आपने कहा, और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है।
बिल्कुल, शतरंज में शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक बिल्कुल अलग राह चुनी, ताई ची चुआन पुश हैंड्स।
ताई ची, वो मार्शल आर्ट?
हाँ वही, एक मार्शल आर्ट, और उसमें भी वर्ल्ड चैंपियन बने।
क्या बात है, शतरंज और फिर मार्शल आर्ट्स, वर्ल्ड चैंपियन, ये कैसे मुमकिन हुआ?
यही बात उन्हें खास बनाती है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग, आप सोचिए कितने अलग हैं, एक पूरी तरह से दिमागी खेल शतरंज, और दूसरा शारीरिक और सहज ज्ञान पर आधारित मार्शल आर्ट ताई ची।
हाँ बिल्कुल, एक में घंटों बैठकर सोचना, दूसरे में शरीर का संतुलन और मूवमेंट,
और दोनों में शिखर तक पहुंचे, ये सोचना ही मतलब अविश्वसनीय लगता है।
और इसी अनुभव ने उन्हें सीखने की प्रक्रिया पर एक अनोखी समझ दी होगी।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, उन्होंने इन सिद्धांतों को खुद जिया है, परखा है। उनकी किताब में आपको परफॉर्मेंस साइकोलॉजी और जो पूर्वी दर्शन है ना, उसका एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
मतलब वो ये कह रहे हैं कि सीखने के गहरे सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं।
हाँ, उनका यही तर्क है।
तो अब बात करते हैं किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग की।
हाँ।
ये किस तरह की किताब है? कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प गाइड है?
नहीं नहीं, ये कोई सीधी साधी हाउ टू गाइड नहीं है। ये उनकी आत्मकथा भी है, सीखने की एक गाइड भी है, और महारत हासिल करने के पीछे का जो दर्शन है उस पर एक गहरा चिंतन भी है।
अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? क्या सिखाना चाहती है ये किताब?
इसका मकसद है हमें ये समझाना कि किसी भी स्किल को टॉप लेवल तक कैसे ले जाया जाए। वेट्सकिन उन सिद्धांतों का एक खाका पेश करते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने चुने हुए क्षेत्र में बेहतरीन बन सकता है।
मतलब ये हमारे सीखने के आम तरीकों को, जो अक्सर आधे अधूरे होते हैं, उन्हें चुनौती देती है।
हाँ बिल्कुल, किताब का सबसे बड़ा तर्क यह है कि सच्ची महारत वो किसी पैदाइशी प्रतिभा या सिर्फ रट्टा मारने से नहीं आती।
तो फिर कैसे आती है?
ये आती है सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझने से, और एक ऐसी मानसिकता, एक माइंडसेट विकसित करने से जो लचीली हो, जो मुश्किलों में ढल सके, अडैप्टेबल हो।
लचीली मानसिकता? और
वेट्सकिन कहते हैं कि हमें अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को पहचानना होगा, उनसे भागने की बजाय उन्हें समझना होगा।
मतलब अपनी वीकनेस को फेस करना।
हाँ, हमें मुश्किलों और असुविधा को गले लगाना सीखना होगा, और जो बुनियादी बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उन्हें इतना रगड़ना होगा, इतना परिष्कृत करना होगा कि वो हमारी दूसरी प्रकृति बन जाए, हमारा सहज ज्ञान, इंट्यूशन बन जाए।
वाह, इंट्यूशन तक, मतलब बिना सोचे समझे सही करना।
बिल्कुल, तो ये किताब असल में इस सवाल का जवाब ढूंढती है, लगातार विश्व स्तरीय उत्कृष्टता कैसे हासिल की जाए।
और ये दिखाती है कि शतरंज के बोर्ड पर चली गई चालें और मार्शल आर्ट के दांव पेच,
हाँ, दोनों के पीछे सीखने के वही गहरे सिद्धांत काम कर रहे होते हैं।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। किताब की बनावट कैसी है?
हाँ, किताब की बनावट भी इसी यात्रा को दर्शाती है। ये तीन हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है द फाउंडेशन, यानी नींव।
नींव मतलब शुरुआती दिन।
हाँ, इसमें विट्सकिन अपने शतरंज के दिनों की बात करते हैं और उन मानसिक मॉडलों को समझाते हैं जिन्होंने उनकी शुरुआती सफलता की नींव रखी।
अच्छा, और दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा है माय सेकंड आर्ट, यानी मेरी दूसरी कला। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ताई ची की दुनिया में कदम रखा
और कैसे शतरंज में सीखे सबक यहाँ भी काम आए।
हाँ, और इससे ये साबित हुआ कि सीखने के सिद्धांत वाकई यूनिवर्सल है।
समझ गई। और तीसरा हिस्सा?
और तीसरा हिस्सा ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, यानी सब कुछ एक साथ लाना। ये इन दोनों दुनियाओं से मिली सीख को जोड़कर सीखने और प्रदर्शन का एक मुकम्मल फलसफा पेश करता है।
अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर फोकस होगा फिर।
हाँ बिल्कुल, यहाँ वो व्यावहारिक रणनीतियों पर फोकस करते हैं जिन्हें हम सब अपना सकते हैं।
तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहले भाग नींव में आपने कहा शतरंज के दिन, क्या खास बातें बताते हैं वो?
वो हमें न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क ले जाते हैं, जहाँ उन्होंने बचपन में सड़क पर लोगों के साथ शतरंज खेलना शुरू किया था। वो अपने पहले गुरु ब्रूस पेंडोल्फिनी का जिक्र करते हैं।
हाँ, उनका नाम फिल्म में भी था।
बिल्कुल, और वो बताते हैं कि पेंडोल्फिनी ने रटने के बजाय गहरी समझ पर जोर दिया। यहीं पर नंबर्स टू लीव बिहाइंड का विचार आता है।
नंबर्स टू लीव बिहाइंड, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है नियमों और तकनीकों को इतना आत्मसात कर लेना, इतना ज्यादा कि आप उनके बारे में सचेत रूप से सोचे बिना सहज रूप से सही निर्णय ले सकें।
जैसे गाड़ी चलाना, शुरू में सब नियम याद रखने पड़ते हैं, फिर आदत हो जाती है।
हाँ बिल्कुल वैसा ही, क्लच, ब्रेक, गियर, शुरू में सोचना पड़ता है, लेकिन एक अनुभवी ड्राइवर ये सब सहजता से करता है बिना सोचे।
वेट्सकिन कहते हैं कि महारत की तरफ बढ़ने के लिए नियमों से आगे बढ़कर इस सहज ज्ञान, इस इंट्यूशन को विकसित करना जरूरी है। वाह, ये तो गहरी बात है। और इसी भाग में एक और क्रांतिकारी विचार आता है, जैसा आपने पहले इशारा किया था, इन्वेस्टमेंट इन लॉस, यानी हार में निवेश।
हाँ, हार में निवेश सुनने में कितना अजीब लगता है ना।
बिल्कुल अजीब, हार में कौन निवेश करना चाहेगा, हम सब तो जीतना चाहते हैं।
सही बात है, हम सब हार से बचते हैं, लेकिन वेट्सकिन का तर्क यह है कि सबसे तेज और गहरी सीख वो हार और गलतियों से ही मिलती है।
अच्छा, कैसे?
वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी हारी हुई बाजियों का घंटों तक विश्लेषण करते थे। सिर्फ ये नहीं देखते थे कि कौन सी चाल गलत थी,
बल्कि ये समझने की कोशिश करते थे कि उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्यों वो गलती हुई।
एग्जैक्टली, असफाका को एक अंत या शर्मिंदगी की तरह नहीं देखना, बल्कि सीखने के लिए एक कीमती डेटा पॉइंट की तरह देखना।
ये नजरिया तो पूरी तरह बदल देने वाला है।
हम तो अक्सर अपनी गलतियों को छुपाते हैं या भूल जाना चाहते हैं, और यही हम सीखने का मौका गवा देते हैं। फिर वो मानसिकता की बात करते हैं, दो तरह की सोच। एक है एंटिटी थ्योरी।
एंटिटी थ्योरी, ये क्या है?
यानी ये मानना कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है, हम जितने होशियार या काबिल पैदा हुए हैं बस उतने ही रहेंगे, बदल नहीं सकते।
ओह, मतलब मैं तो मैथ्स में हमेशा से कमजोर हूँ वाली सोच।
हाँ बिल्कुल वही। और दूसरी है इंक्रीमेंटल थ्योरी, जिसे आजकल हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट, ये तो सुना है काफी।
हाँ, यानी ये मानना कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत, अभ्यास और सही तरीकों से बढ़ाया जा सकता है।
तो वेट्सकिन ग्रोथ माइंडसेट के समर्थक हैं।
पूरी तरह से। वो कहते हैं कि जैसे ही हम मान लेते हैं कि हम बस इतने ही अच्छे हैं, हम मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो चुनौती एक अवसर बन जाती है।
और इसी मानसिकता से जुड़ा है सॉफ्ट जोन का कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है?
सॉफ्ट जोन, ये एकाग्रता की एक खास अवस्था है, मतलब शांत, लचीली, केंद्रित, जहां आप दबाव में भी बिखरते नहीं बल्कि स्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं।
और इसका उल्टा?
इसका उल्टा है हार्ड जोन, तनावपूर्ण कठोर फोकस, जैसे गुस्से में या बहुत टेंशन में होते हैं, जो ज्यादा दबाव पड़ने पर टूट जाता है। सॉफ्ट जोन में आप ज्यादा रचनात्मक और अनुकूलनीय होते हैं।
ये तो बहुत काम की चीज लगती है, खासकर प्रेशर वाली सिचुएशन में।
हाँ, और फिर वो गलतियों के डाउनवर्ड स्पाइरल, यानी नकारात्मक चक्र को तोड़ने की बात करते हैं।
डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब एक गलती के बाद और गलतियां होना।
हाँ, अक्सर होता है ना, एक गलती होती है, हम घबरा जाते हैं और फिर गलतियों की झड़ी लग जाती है। वेट्सकिन इसके लिए एक रीसेट रूटीन बनाने की सलाह देते हैं।
रीसेट रूटीन, जैसे?
कुछ ऐसा जो आप तुरंत कर सकें ताकि आप वापस शांत और केंद्रित हो जाएं, जैसे गहरी सांस लेना या कोई खास फिजिकल मूवमेंट या कोई मंत्र दोहराना, कुछ भी जो आपको वापस ट्रैक पर लाए।
इंटरेस्टिंग। और ब्रेकिंग स्टैलियंस, ये क्या है, जंगली घोड़े?
हाँ, ये एक रूपक है, जंगली घोड़ों को वश में करना। ये अपनी तेज भावनाओं जैसे बहुत ज्यादा उत्साह या गहरी निराशा, उनको काबू में करने और उन्हें अपनी ताकत बनाने की कला है। भावनाओं से बह नहीं जाना बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना।
मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की तरह?
काफी हद तक। और सबसे जरूरी, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। न अतीत की हार का अफसोस, न भविष्य की जीत की चिंता। फोकस सिर्फ अभी पर।
वाह, ये तो सिर्फ पहले भाग की बातें हैं। अब आते हैं दूसरे भाग, मेरी दूसरी कला पर, ताइची।
हाँ, यहाँ वेट्सकिन ताइची सीखने का अपना अनुभव बताते हैं। और सबसे पहली बात जो हाईलाइट करते हैं वो है विनम्रता।
विनम्रता कैसे?
सोचिए, शतरंज का वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी फिर से एक नौसिखिया बनकर शुरुआत कर रहा है, सब कुछ शुरू से सीख रहा है। ये विनम्रता सीखने के लिए कितनी जरूरी है।
सही बात है, ईगो को साइड में रखना पड़ता है।
बिल्कुल। वो अपने गुरु विलियम सीसी चेन का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे शतरंज और ताइची में ऊपरी तौर पर जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद
गहरे दार्शनिक स्तर पर समानताएं हैं।
हाँ, जैसे केंद्र पर नियंत्रण, सेंटर कंट्रोल, स्पेस का इस्तेमाल, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ये सब दोनों में महत्वपूर्ण है।
कमाल है, सिद्धांतों की यूनिवर्सल वैलिडिटी का सबूत।
हाँ, और इस भाग का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स,
छोटे दायरे बनाना। ये क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है किसी भी तकनीक या कौशल को बार बार अभ्यास करके इतना मांझना, इतना परिष्कृत करना कि वो अविश्वसनीय रूप से कुशल, सूक्ष्म और सहज बन जाए।
अच्छा, जैसे कोई पेंटर ब्रश के स्ट्रोक को महीन करता जाता है।
हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बड़े भद्दे मूवमेंट से छोटे, लगभग अदृश्य लेकिन बेहद असरदार मूवमेंट्स की ओर जाने की प्रक्रिया है। गहराई में जाना, सतहीपन से हटकर।
ये तो बहुत अभ्यास मांगता होगा।
बहुत ज्यादा। और फिर आता है विपरीत परिस्थितियों का उपयोग करना, ये भी जबरदस्त है।
मतलब मुश्किलों को मौके में बदलना।
हाँ, वेट्सकिन एक किस्सा बताते हैं कि कैसे एक अहम मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस में उनका हार्ट टूट गया।
ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा।
हाँ, किसी के लिए भी बहुत बड़ी निराशा होती, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर में बदला। उन्होंने एक नई एक हाथ वाली तकनीक विकसित की।
टूटे हाथ से?
हाँ, और उस तकनीक ने उन्हें और अप्रत्याशित और खतरनाक बना दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया।
ये तो अविश्वसनीय है, प्रेरणादायक भी।
बिल्कुल। और फिर वो स्लोइंग डाउन टाइम की बात करते हैं।
समय को धीमा करना, ये कैसे होता है? कोई जादू?
नहीं नहीं, जादू नहीं है, बल्कि जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं, आपका सहज ज्ञान इतना विकसित हो जाता है, तो तेज गति वाली जटिल स्थितियां भी आपको धीमी और स्पष्ट लगने लगती हैं।
अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं?
कुछ वैसे ही समझ लीजिए। आप पैटर्न को तुरंत पहचान लेते हैं, आप एंटिसिपेट कर पाते हैं। ये हजारों घंटों के समर्पित अभ्यास का नतीजा है, जिसे चंकिंग भी कहते हैं, जानकारी के बड़े टुकड़ों को एक इकाई के रूप में देखना।
समझ गया, मतलब दिमाग इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि बाहर की दुनिया धीमी लगने लगती है।
बिल्कुल। अब आते तीसरे और अंतिम भाग पर, सब कुछ एक साथ लाना।
हाँ, यहाँ सब कड़ियाँ जुड़ेंगी।
बिल्कुल। वेट्सकिन यहाँ महारत और सहज ज्ञान के रहस्य को खोलते हैं। वो कहता है कि जो चीज बाहर से जादुई या रहस्यमयी लगती है, वो असल में सालों की अनुशासित, फोकस्ड मेहनत और सही प्रक्रिया का नतीजा होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है।
ये जानना जरूरी है, हम अक्सर सिर्फ नतीजा देखते हैं, पीछे की मेहनत नहीं।
सही कहा। और यहाँ वो एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक बताते हैं, बिल्डिंग योर ट्रिगर।
अपना ट्रिगर बनाना, ये क्या है?
इसका मतलब है प्रदर्शन से ठीक पहले करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना, एक प्री परफॉर्मेंस रिचुअल,
जैसे क्रिकेटर्स करते हैं बैटिंग से पहले।
हाँ बिल्कुल। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ गहरी सांसें लेना, कोई खास गाना सुनना, कोई छोटा सा स्ट्रेच करना। इसे बार बार करने से यह आपके दिमाग और शरीर के लिए एक सिग्नल बन जाता है कि अब सॉफ्ट जोन में जाने का समय है,
मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट में आने का।
हाँ, ये एक तरह का मानसिक स्विच है जो आपको फोकस और शांत रहने में मदद करता है।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है।
और अंत में वो तनाव और रिकवरी के संतुलन पर बहुत जोर देते हैं,
स्ट्रेस और रिकवरी का बैलेंस।
हाँ, सीखना या ट्रेनिंग सिर्फ मेहनत करना नहीं है, असली विकास और मजबूती तब आती है जब आप मेहनत के बाद शरीर और दिमाग को ठीक से आराम देते हैं, रिकवर होने का मौका देते हैं। ओवर ट्रेनिंग से बचना बहुत जरूरी है।
ये बात अक्सर हम भूल जाते हैं, खासकर जब जुनून सवार हो।
बिल्कुल। उस सीखने को एक आजीवन कला की तरह देखने को कहते हैं। मंजिल सिर्फ एक स्किल सीखना नहीं, बल्कि सीखने की कला में ही माहिर होना है, ताकि हम जिंदगी भर सीखते और बढ़ते रहें।
वाह, क्या सोच है। तो इस पूरी किताब से अगर हमें कुछ सबसे जरूरी बातें चुननी हो जो श्रोता अपने साथ ले जा सके, तो क्या होंगी?
मेरे लिए शायद पहली और सबसे अहम है परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना।
प्रोसेस ओवर आउटकम।
हाँ, हम अक्सर सिर्फ फाइनल रिजल्ट जैसे परीक्षा के नंबर या प्रमोशन पर अटके रहते हैं, लेकिन वेट्सकिन कहते हैं कि सीखने की यात्रा, रोज की छोटी छोटी कोशिशें, प्रयोग करना, इसी में असली मजा और टिकाऊ प्रगति छिपी है। अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप बेहतर होंगे।
मैं सहमत हूँ, ये प्रेशर भी कम करता है शायद। और दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना।
हाँ, इंक्रीमेंटल थियोरी।
ये विश्वास कि मैं गणित में कमजोर हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, जैसी सोच हमें बांध देती है, इसके बजाय ये सोचना कि मैं मेहनत करके इसे सीख सकता हूँ या मुझे और अभ्यास की जरूरत है, ये हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
बिल्कुल, ये नजरिया भारत में खासकर बहुत जरूरी है, जहाँ अक्सर बच्चों पर स्मार्ट या कमजोर का लेबल लगा दिया जाता है।
हाँ बिल्कुल सही कहा। तीसरा क्या होगा?
तीसरा है हार और असफलता को गले लगाना, इन्वेस्टमेंट इन लॉस।
हाँ, ये सुनना शायद थोड़ा अटपटा लगे, खासकर हमारे समाज में जहाँ फेलियर को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है।
लेकिन वेट्सकिन कहते हैं कि गलतियां और हार सीखने के सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे डरने या शर्मिंदा होने के बजाय उनका विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ और क्यों।
जैसे साइकिल चलाने सीखते वक्त गिरना।
एग्जैक्टली, गिरना सीखने का हिस्सा है, इसे हर जगह लागू करें। चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लें, भले असफल होने का डर हो, वहीं ग्रोथ है।
चौथा है गहराई बनाम चौड़ाई।
हाँ, यानी बुनियादी बातों में महारत हासिल करना, मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स। आज की दुनिया में हम बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर सतही तौर पर।
मल्टीटास्किंग और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है।
बिल्कुल, वेस्किन कहते हैं कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अविश्वसनीय गहराई से समझना ज्यादा फायदेमंद है। नींव मजबूत होगी तभी ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है।
जैसे कोई शास्त्रीय गायक घंटों तक सिर्फ एक सुर का रियाज करता है।
बिल्कुल सही। और पांचवा,
प्रदर्शन का मनोविज्ञान, खासकर सॉफ्ट जोन का आइडिया।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है,
प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं वो भी मायने रखता है।
बहुत ज्यादा दबाव में अपनी मानसिक स्थिति को कैसे संभालते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्या हम तनाव में घबराकर कठोर हो जाते हैं, हार्ड जोन, या शांत और लचीले रहकर स्थिति को संभालते हैं, सॉफ्ट जोन। और अच्छी बात यह है कि ये सीखा जा सकता है।
ये जानना राहत देता है, चाहे वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, कोई इम्तिहान हो, या घर पर कोई मुश्किल बातचीत ही क्यों ना हो।
बिल्कुल, इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं।
हाँ, कुछ कोट शेयर करें।
जैसे वेट्सकिन लिखते हैं, उत्कृष्टता का पीछा करने की कुंजी एक जैविक दीर्घकालिक सीखने की प्रक्रिया को अपनाना है, ना कि स्थिर सुरक्षित मध्यमता के खोल में जीना।
वाह, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है ग्रोथ के लिए। हमेशा सेफ खेलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
बिल्कुल, और ये भी, विकास प्रतिरोध के बिंदु पर आता है। हम खुद को धकेल कर और अपनी क्षमताओं की बाहरी सीमाओं को खोजकर सीखते हैं।
मतलब जब तक हम चुनौती का सामना नहीं करते, जब तक हमें थोड़ी मुश्किल महसूस नहीं होती, तब तक हम सीखते नहीं हैं। मुश्किल ही अवसर है।
सही। एक और गहरी बात, सीखने का सिद्धांत है कि मैक्रो बड़ी तस्वीर को समझने के लिए माइक्रो छोटे विवरण के रहस्य में गहराई से उतरना।
ये वही गहराई वाली बात है, छोटी चीजों को समझो तभी बड़ी पिक्चर क्लियर होगी।
हाँ जी, और मानसिकता पर यह पंक्ति बहुत असरदार है। जिस क्षण हम मानते हैं कि सफलता लचीलेपन और कड़ी मेहनत की बजाय क्षमता के एक अंतर्निहित स्तर से निर्धारित होती है, हम विपत्ति के सामने भंगुर हो जाएंगे।
ये सीधे सीधे ग्रोथ माइंडसेट की अहमियत बताती है। अगर हम लचीलेपन और मेहनत पर यकीन करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं, वरना पहली ठोकर में बिखर जाएंगे।
बिल्कुल।
तो सवाल उठता है कि इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें?
कुछ प्रैक्टिकल तरीके। देखिए, काम या पढ़ाई में हम जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट चुन सकते हैं जो हमें थोड़ा डराते हों, जो हमारी वर्तमान क्षमता से थोड़े ज्यादा हों। ये हार में निवेश का एक तरीका है।
मतलब खुद को चैलेंज करना।
हाँ, और जब गलती हो तो उसे छुपाने के बजाय उसका विश्लेषण करें, क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि सब सीखें।
और वो सॉफ्ट जोन वाली बात मीटिंग्स वगैरह के लिए।
बिल्कुल, मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन से पहले अपना एक छोटा सा ट्रिगर रूटीन बना सकते हैं। शायद 2 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लेना, या अपने कुर्सी पर बैठे बैठे कंधों को स्ट्रेच करना, कुछ भी जो आपको सेंटर करे, ये आपको सॉफ्ट जोन में लाने में मदद करेगा।
और रट्टा मारने के बजाय
किसी भी विषय के मूल सिद्धांतों को समझने पर ज्यादा ध्यान दें, क्यों पूछें, सिर्फ क्या नहीं।
अच्छा, और अगर कोई नया हुनर सीख रहे हैं, जैसे कोई खेल या म्यूजिक,
तो मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स का सिद्धांत अपनाएं। एक छोटे से हिस्से को चुनें और उसे परफेक्ट करने की कोशिश करें, फिर अगले पर बढ़ें।
जैसे गिटार पर पूरा गाना एक बार में सीखने की कोशिश करने के बजाय
पहले सिर्फ इंट्रो या पहले वर्स के कोर्ड्स को अच्छी तरह साधें, फिर आगे बढ़ें और पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। सिर्फ अंतिम परिणाम के पीछे ना भागें, एंजॉय द जर्नी।
और व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों में या मुश्किल हालात में,
जब किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना हो, जैसे किसी से बहस हो जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर सॉफ्ट जोन में आने की कोशिश करें। शांत, केंद्रित, समाधान खोजने वाला रवैया,
मतलब रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना।
बिल्कुल। और अपनी असफलताओं या गलतियों को व्यक्तिगत हार की तरह ना देखें, बल्कि सीखने और बेहतर बनने के मौके की तरह देखें। खुद के प्रति भी ग्रोथ माइंडसेट रखें।
ये सब बहुत उपयोगी बातें हैं। इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा क्लिक की?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सीखने के सिद्धांत वाकई कितने यूनिवर्सल हैं। शतरंज, मार्शल आर्ट, संगीत, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह वही गहरे सिद्धांत काम करते हैं। अगर हम सीखने की कला सीख लें तो शायद कुछ भी सीख सकते हैं। ये बहुत एम्पावरिंग सोच है।
हाँ, ये तो है।
और मेरे लिए सॉफ्ट जोन का विचार और हार में निवेश का नजरिया बहुत शक्तिशाली लगा। ये जानना कि दबाव में शांत रहना सीखा जा सकता है और हार असल में जीत की सीढ़ी बन सकती है, ये बहुत उम्मीद जगाता है। ये हमें अपनी क्षमताओं को सीमित मानने से रोकता है।
बिल्कुल।
तो चलिए, आज की इस ज्ञान गोष्ठी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। वेट्सकिन ने शतरंज और ताइची जैसे दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों में महारत हासिल की। अगर आपको सीखने की इस कला में महारत हासिल हो जाए तो आप किन दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाना चाहेंगे? वो कौन से दो शिखर होंगे जिन पर आप अपनी पताका फहराना चाहेंगे? जरूर सोचिएगा इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।